नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट आज से जयपुर में। प्रदेश की अगले दशक की डिजिटल ग्रोथ के रोड मैप को प्रस्तुत किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 11 सालों में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, अखंड भारत को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। और प्रदेश भर में ठंड के असर में बढ़ोतरी, कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट आज से जयपुर में आयोजित की जा रही है। सीतापुरा स्थित JECC में 6 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई देशों से हजारों विजनरी, निवेशक और स्टार्टअप संस्थापक भाग ले रहे हैं। समिट का उद्घाटन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करेंगे। इस दौरान प्रदेश की अगले दशक की डिजिटल ग्रोथ के रोड मैप को प्रस्तुत किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के शासन सचिव डॉ रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि समिट में डिजिटल एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन टूरिज्म, वाटर गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई अहम विषयों पर मंथन होगा। इस दौरान आई स्टार्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ राजस्थान भी आयोजित होगा। इसमें करीब 50 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय समिट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के संभावित निवेश और राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के लॉन्च के लिए मंच तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। समिट में रोजाना आगंतुकों के प्रदेश की बहुरंगी संस्कृति से परिचय कराने के लिए कई आयोजन भी रखे गए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि सम्मेलन के माध्यम से गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के उपयोग का विस्तार होगा।
इस कॉन्फ्रेंस में फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, यूज ऑफ AI, कई ग्लोबल CEOs आ रहे हैं। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस है टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस कॉन्फ्रेंस से यह अपेक्षा किया जाता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस में बढ़ोतरी होगी, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जो साइबर प्रूफ्ड हैं, साइबर सिक्योर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 नए आपराधिक कानून आने वाले सालों में सत्र न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि देश में फॉरेंसिक लैब का नेटवर्क अगले 5 सालों में स्थापित करने के लिए 30,000 करोड़ रूपये का निवेश किया जाएगा। गृहमंत्री ने 373 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और 2 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में जो परिवर्तन हुआ है वह भाजपा की देश की हर इंच भूमि को भारत माता मानने की अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है।
नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये द्वीपों को एक आइसोलेट देश का हिस्सा मानने की जगह देश का महत्वपूर्ण सामरिक स्थान बनाने का एक नया प्रयास हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभी प्रकार की सुविधाएं जो भारत के सब हिस्से में मिलती है द्वीप पर रहने वाले सभी हमारे भाइयों बहनों को मिले, इसके लिए सतत प्रयास किया है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राजस्थान सहित 7 राज्यों के कृषि मंत्रियों से विभिन्न विकास योजनाओं का फीडबैक लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्र से मिले 425 करोड़ रूपये के बजट में से अब तक 333 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस राशि से प्रदेश के किसानों को योजना के तहत तहत व्यापक लाभ दिया गया है। इस अवसर पर डॉ. मीणा ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों के हित में काम कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को सवाईमाधोपुर में 18 और 19 जनवरी को आयोजित होने वाले अमरूद महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। 11 जनवरी तक खेली जाने वाली इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। पुरुष और महिलाओं की लगभग 73 टीमें इसमें भाग लेंगी। पूर्वांचल में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से सेवा की भावना से काम करने और सभी के कल्याण के लिए साथ मिलकर चलने का आह्वान किया है। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित प्रदेश भाजपा कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और आम जन से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को कहा। कार्यशाला के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया।
जो कुछ भी अपने जीवन में काम करें, राजनीतिक काम करें, तो लोकतंत्र के हितों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। आर्थिक विषय पर, सामाजिक विषय पर भी चर्चा हुई। गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाना है जिससे समाज की स्थापना हो सके। सकारात्मकता, पंथ निरपेक्षता अर्थात सर्व धर्म समभाव का भाव, सर्वे भवंतु सुखिने का भाव, ये हमें हो, इस प्रकार का ये संदेश देने का काम किया। हमारी राजनीति मूल्यों के आधार पर, मूल्य यानी आदर्श के आधार पर राजनीति होनी चाहिए।
प्रदेश में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष जांच कैंप और कैंसर डिटेक्शन के मोबाइल शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई गई डिटेक्शन वैन के जरिए दूर दराज के इलाकों में लोगों की स्क्रीनिंग निःशुल्क की जा रही है।
जिले में कैंसर डिटेक्शन वैन द्वारा 5 जनवरी को जिला अस्पताल हिंडौन, 6 जनवरी को जिला अस्पताल करौली और 7 जनवरी को उप जिला अस्पताल सपोर्ट में शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान संभव हो सकेगी। यह पहल जिले वासियों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में ठंड का असर बढ़ गया है। शेखावाटी सहित पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में भी तेज सर्दी ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर रखी है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान सीकर में सबसे कम 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। माउंट आबू में भी पारा गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। विभाग के अनुसार आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और कई स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR से लगते इलाकों में आज तड़के घना कोहरा छाया रहा। वहीं सवाईमाधोपुर, पाली और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों तथा सरहदी जिलों में भी धुंध छाए रहने से दृश्यता न्यूनतम रही। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि वहां बीते 2 दिनों से पड़ रही तेज सर्दी से सुबह शाम के समय गली और बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई देता है। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत राज्य स्तरीय मूल्यांकन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिक्षा संकुल में आयोजित 2 दिन के इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के चुने हुए विचारों और मॉडल्स को राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाएगा। प्रतियोगिता के जरिए 10 राष्ट्रीय विजेता, 100 राज्य स्तरीय और 1000 जिला स्तरीय विजेताओं का चयन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट आज से जयपुर में। प्रदेश की अगले दशक की डिजिटल ग्रोथ के रोडमैप को प्रस्तुत किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 11 सालों में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, अखंड भारत को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे और प्रदेश भर में ठंड के असर में बढ़ोतरी, कई स्थानों पर घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।